option थे, यात्रियों का एक दल जहाज से यात्रा कर रहा था और अचानक समुद्र में तूफान आ गया। नाव हिलने लगी, यात्री घबरा रहे थे। समुद्र का पानी नाव में आने लगा और सभी यात्री प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हमारी रक्षा करो। पर देखा कि एक मुसलमान फकीर सोया पड़ा है, और जब यह नाव बहुत हिलती है तब उठ के बैठ जाता है, और सभी प्रार्थना कर रहे उससे कहते तुम भी तो प्रार्थना करो, परंतु वो नहीं करता है। सभी अपनी अपनी प्रार्थना में लगे हुए, प्रभु इस नाव को बस किनारे लगा दो, इस बार बचा लो, अगर बचा दो तो मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, अगर बचा लो तो मैं वो कर दूंगा। कोई कहता है बचा लो तो मैं संसार छोड़ दूंगा, आपकी सेवा में जीवन लगा दूंगा, बस इस बार बचा लो, बस इस बार बचा लो। और उसको कहते हैं कि तुम भी तो प्रार्थना करो, हम तो पहली बार ही प्रार्थना कर रहे, तुम तो हमेशा करते हो, अभी क्यों नहीं करते। वो कहता है मैं नहीं करूंगा, और सभी आंख मूंद कर बड़ी बड़ी कसमें, बड़े बड़े वायदे, ऐसी ऐसी बातें करने लगते हैं कि जो उन्होंने कभी की नहीं थी। अचानक फकीर जोर से चिल्लाता है, रुक जाओ, वायदे करना बंद करो, किनारा दिखाई दे रहा है, मुश्किल में पड़ जाओगे। तो सभी आंखें खोलते देखते किनारा आ गया, किनारा आ गया, किनारा आ गया, प्रार्थना और भगवान रह गया बाजू में। सब अपना अपना बोरी बिस्तर पैक करने, ठीक करने लगते हैं, और जब किनारा पहुंच जाता है तब वो फकीर बैठ जाता है प्रार्थना करने। वो कहते तुम भी अजीब हो, जब नाव मझधार में थी, जब नाव डूबने को थी, तब तुमने कुछ नहीं किया, और अब जब नाव किनारे आ गई है तब प्रार्थना करते हो। वो फकीर कहता है किनारे में ही बेहोश होने की संभावना ज्यादा होती है, किनारे में ही व्यक्ति ज्यादा डूबते हैं, मझधार में तो सचेत होता है, तब डूबने की संभावना कम है। डूबता आदमी तब है जब संकट टल जाता है, जब ढीला हो जाता है, जब किनारा आ जाता है तभी ज्यादा डूबता है, जब संघर्षमय होता है, जब खोज रहा होता है तब नहीं डूबता है, जब शांति हो जाती है तभी बेहोशी चालू हो जाती है, जब सब तरफ से सुरक्षित निरापद स्थान पर पहुंच जाता है तब वास्तविक खतरा चालू होता है। इसलिए वो कहता है इसलिए मैं अब प्रार्थना कर रहा हूं। तो खतरा ज्यादा कब रहता है? जब सब तरफ शांत है, सब तरफ ठीक है, और जब व्यक्ति फंसा हुआ रहता है तब सचेत रहता है, अलर्ट रहता है। तो एवर रेडी कब रहना चाहिए? बीच मझधार में या किनारे पर? सब जगह पर, हमेशा, निरंतर। समय का गहरा इशारा कल की मुरली में बाबा ने दिया है, समय कौन सा चल रहा है और हमें क्या करना है इस समय पे। समय का बहुत महत्व है, और हम क्या कर रहे हैं समय के साथ। तो कल की अव्यक्त वाणी थी 15 दिसंबर 2007 की। तब बाबा ने कहा था कि समय की रफ्तार बहुत तीव्र है, समय बहुत तेज रफ्तार से चल रहा है। 12 साल पहले तो कल की मुरली क्या क्या कहा बाबा ने? पहले आप बताएंगे फिर हम चालू करेंगे। जो पीछे से पीछे वाले बताएंगे क्या क्या वह। संतुष्ट रहना और करना है और क्या कहा? नष्ट हो मां बन जाओ और क्या कहा आशीष भाई? मुरली तो बंद कर दो। नहीं इधर क्या कहा? विशेष आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान तो हुई और सदा खुशी में रहो और सूर्य निकलता है किरण फैलाता है तो तुम्हें क्या करना है? मास्टर ज्ञान सूर्य बन कौन सी किरणें फैलानी है? कौन सी किरणें फैलानी है? सुख और शांति की किरणें फैलानी, सुख शांति संपन्न किरणें फैलानी है और एक सेकंड एक वर्ष के जैसा है और तो छह बातें हम इसमें चर्चा करेंगे। एक से एक बात, दो से दो, तीन से तीन, चार से चार, पांच से पांच और छह से छह, 21। एक से एक, एक अर्थात समय, एक से एक। तो समय संगम युग का सबसे बड़ा खजाना है। किन खजानों की बाबा बात कर रहे हैं? ऐसे सूक्ष्म खजाने हैं ये, संसार इन खजानों को नहीं जानता। संसार तो स्थूल खजानों के पीछे पड़ा हुआ है जो मिलते नहीं परंतु उसके पीछे लगे रहते हैं, कहीं मिल जाए तो बहुत अच्छा, और मिल भी जाता है तो व्यक्ति नहीं रहता है। तब मिल तो जाता है पर उसको उपभोग करने की क्षमता नहीं रहती, तब मिलता है खजाना। तो सबसे पहली चीज जो बाबा ने कही वो है संगम युग का समय सबसे बड़ा खजाना है। इस खजाने के क्या महत्व है? इस समय का नौ महत्व बताए, नौ बातें। सबसे पहला ये समय है जहां पर क्या होता है, भविष्य की प्रलब्ध बनाने का समय ये है। भविष्य का सब कुछ इस समय पर निर्भर करता है जो कि अब चल रहा है। दूसरी बात, एक सेकेंड एक साल के वर्ष बराबर है, इतना इस समय का महत्व है। एक सेकेंड अर्थात एक साल। तीसरा, अब नहीं तो कब नहीं। ये स्लोगन तुम दूसरों को सुनाते हो, अपने आप को सुनाओ। ये स्लोगन सेवा के लिए सुनाया जाता है, अब पुरुषार्थ के लिए स्वयं स्वयं को सुनाओ कि अब नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि लंबे समय के संस्कार चाहिए, नहीं तो वही याद आएगा जो जीवन भर याद किया मरते समय, अंतकाल। चौथा, यह समय हीरे तुल्य है। समय कैसा है? हीरे तुल्य समय है। हीरे का बहुत महत्व है तो यह समय भी हीरे जैसा महत्व है। पांचवा, यह जीवन भी हीरे तुल्य है। समय तो हीरे तुल्य है ही, तुम्हारा जीवन भी हीरे तुल्य जीवन है। तुमको इस समय हीरे तुल्य जीवन की अनुभूति होती है। वो सतयुग तो क्या होगा, वो गोल्ड है, ये तो हीरा है। छठवा, इसी समय ही बिछड़ी हुई आत्मा को क्या क्या प्राप्त होता है? परमात्मा प्राप्ति होती है, परमात्मा अधिकार प्राप्त होता है, परमात्मा मिलन होता है आत्माओं का, परमात्मा शक्तियां मिलती है आत्माओं को इसी समय। जो बिछड़ी हुई आत्मा है, जो भटक रही आत्मा है संसार में, जो यहां वहां खो गई है आत्मा है, उन आत्माओं को अब इस समय उनका परमात्मा मिलन होता है। और कोई समय नहीं है जो परमात्मा मिलन होगा, अभी ही परमात्मा मिलन होता है। और सातवा, परमात्मा परिवार, ईश्वरीय परिवार तुमको अब प्राप्त होता है, सतयुग में प्राप्त नहीं होगा। यह ईश्वरीय परिवार इस संगम युग पर प्राप्त होता है, परमात्मा ईश्वरीय परिवार। आठवा, जितना श्रेष्ठ बनना चाहो उतना अब बन सकते हो। जितना भी श्रेष्ठ बनना चाहो, जितना स्वयं को उठाना चाहो उठा सकते हो, कुमारों से मुलाकात, जितना उठाना चाहो उठा सकते हो, जितना गिरना चाहो उतना भी गिर सकते हो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। किस गहरे तल तक गिर सकते हो इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितना भी गिरना चाहो गिरो, और जितना उठना चाहो उतना उठ सकते हो। तो श्रेष्ठ बनने का समय अब है। और लास्ट बात, भाग्यवान हो, पद्मा पदम भाग्यवान हो, ऐसा भाग्य और किसी युग में तुमको नहीं मिलेगा। तो ये सदा याद रहता है, सदा याद रह के सदा हर्षित रहते हो, सदा है, सदा है, सदा है, जो है वो हाथ उठाओ। क्या बोला बाबा ने, अंडरलाइन करो सदा को, सदा हर्षित, ऐसा भाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। या दुखी रहते हो, यहां ठीक नहीं है, ये लोग ठीक नहीं है, डिपार्टमेंट ठीक नहीं है, इंचार्ज ठीक नहीं है, साथी ठीक नहीं है, छोटे ठीक नहीं है, बाकी डिपार्टमेंट वाले ठीक नहीं है, यहां पर भी लोग ऐसे करते हैं, इस परिवार में भी ऐसे ऐसे लोग, ये सारे विचार चलते हैं या भाग्य के विचार चलते हैं, वाह मेरा भाग्य, कौन से विचार चलते हैं। तो ये नौ बातें कही समय के बारे में। सबसे पहला, प्रारब्ध बनाने का समय अब है। दूसरी बात, एक सेकेंड एक साल के बराबर है। तीसरी बात, अब नहीं तो कब नहीं। चौथी बात, ये हीरे तुल्य समय है। और पांचवी बात, ये हीरे तुल्य समय के साथ साथ जीवन भी है, इसका अनुभव तुम अब करते हो। छठवीं बात, जो बिछड़ी हुई आत्मा है, भटक रही आत्मा है, उनको क्या करते हो, इस समय क्या मिलता है, परमात्मा प्रेम, परमात्मा प्राप्ति, परमात्मा अधिकार, सब कुछ उनको यहां मिलता है। और सातवीं बात, तुमको क्या मिलता है, यहां ईश्वरीय परमात्मा, ईश्वरीय परिवार यहां पर प्राप्त होता है, यह किसी भी युग में नहीं होगा। उसके बाद आठवां, श्रेष्ठ, जितना भी श्रेष्ठ बनना चाहो बन सकते हो, इस युग को ही वरदान मिला हुआ है, आशीर्वाद है भगवान का इस युग को। और लास्ट भाग्य, ऐसा भाग्य और किसी युग में नहीं, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो। बाबा ने कहा यह सदा स्मृति में रहता है, सदा रहता है, और यह स्मृति में रहते हुए सदा हर्षित रहते हो, सदा सदा सदा, अंडरलाइन करो सदा को, और फिर हाथ भी उठाओ, और बाप दादा खुश है। तो ये सबसे पहली बात बाबा ने कही कल की मुरली में। फिर दो चीजें, फर्स्ट से टाइम, दो से पास फिथ ऑनर बनने के लिए दो चीजें चाहिए, कौन सी देवेंद्र भाई? एक तो है नष्ट मोह और दूसरी है एवर रेडी। नष्ट मोह के लिए क्या कहा, सबसे पहला नष्ट मोह किससे हो जाओ तो बाकी सबसे नष्ट मोह स्वतः ही हो जाओगे। पहले देह से नष्ट मोह हो जाओ, देह भान से नष्ट मोह हो जाओ तो बाकी सारा नष्ट मोह स्वतः हो जाएगा। कितनी गहरी बात कह दी, इस उससे नष्ट होने की जरूरत नहीं, इस पेन से मोह है, कैसे इस पेन के मोह को छोड़ू, ये करने की जरूरत ही नहीं, शरीर के मोह को छोड़ दो बाकी सब मोह अपने आप निकल जाएंगे। सबसे जड़ जो है उस पर घात करो, नहीं जीते जी यहीं रहते हुए, इसी देह में रहते हुए देह से उपराम, यही पुरुषार्थ है इस जीवन का। शरीर दिखे ही नहीं कल की मुरली साकार, भाई भाई को देखो, शरीर को देखना अर्थात पाप, आत्मा को देखना अर्थात पुण्य, ये परिभाषा है पाप और पुण्य की। क्योंकि शरीर को देखने से विकार उत्पन्न होते हैं, शरीर को देखने से ही विकारी ख्यालात उत्पन्न होते हैं, शरीर को देखने से ही भान आता है मैं स्त्री मैं पुरुष। तो पहला है नष्ट मोह, दूसरा है एवर रेडी। एवर रेडी के लिए क्या, अचानक कुछ भी हो जाए, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में अचानक के पार्ट में भी एवर रेडी। यहां पर उदाहरण दिया दादी का, दादी ने एवर रेडी का पार्ट बजाया, इजी नेचर, इजी स्वभाव, इजी कार्य, इजी स्वभाव, इजी सेवा, इजी संतुष्ट करना, इजी संतुष्ट रहना, हर बात में इजी। तो ये दो बातें, तो पास विथ ऑनर होने के लिए क्या चाहिए, मास्टर सर्वशक्तिमान हो, कर सकते हो, पुरुषार्थ की गति क्या चालू है, स्वयं को चेक करो, बाबा ने कहा स्मृति कहां तक रहती है, स्वयं को चेक करो, तो ये दो बातें चेक करनी है कि निरंतर स्थिति कैसी हो, डिटैच्ड, नष्ट मोह वाली, किसी भी व्यक्तियों से मोह नहीं, किसी व्यक्ति की याद नहीं, इसको फोन करूं, उसको फोन करूं, इसको मैसेज करूं, उसको मैसेज करूं, सहज स्थिति। काम है, बात कर लिया, काम पूरा हुआ, आगे बढ़ो, किसी से विशेष लगाओ, किसी को पकड़ के रखना बार बार एक के पीछे आवश्यक नहीं है। काम है, काम ले लिया, पूरा हो गया, आगे बढ़ो, बाद में वो जीवन भर कभी ना मिले चलेगा। ट्रेन में मिलता है व्यक्ति, 12 घंटा साथ में रहता है, बाद में उसकी याद आती है क्या कभी? बस उसका स्टेशन आ गया, हमारा स्टेशन आ गया, हम निकल गए। वैसे ही ये बड़ी ट्रेन है, संगम एक्सप्रेस, हजारों आ रहे हैं, हजारों जा रहे हैं इसमें। तो ये दो बातें, फिर उसके बाद में तीन तीन विधियां है खजाने जमा करने की। कौन सी तीन विधियां आशीष भाई, निखिलेश भाई, चिमन भाई जी, तीन विधियां कौन सी है खजाने जमा करने की? एक है पुरुषार्थ, दूसरा है दुआ, दूसरा है पुण्य, और तीसरा है दुआ। पुरुषार्थ, पुण्य और दुआ, ये तीन विधि है खजाने जमा करने की। खजाने हमको, हमको बहुत धनवान बनना है, धनपति बनना है, खजाने बढ़ाने हैं अपने पास, धनी राम। तो क्या करेंगे, खुद पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ किए धनवान नहीं बन सकता है कोई, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पर पुरुषार्थ भी उचित दिशा में हो। जैसे जंगल का एक राजा बूढ़ा हो गया, और बूढ़ा हो गया तो सोचा अब मेरा उत्तराधिकारी भी तो कोई होना चाहिए, तो किसको अपना उत्तराधिकारी चुनो? तो देखा एक बंदर गुजर रहा है, और सोचा इस बंदर को अपना उत्तराधिकारी बना देता हूं, और उसका राज तिलक कर दिया, राजाभिषेक कर दिया, और उसको राजा घोषित कर दिया। तो बंदर बहुत खुश हो गया कि मैं अब जंगल का राजा हूं। और राजा के पास एक दिन समस्या लेकर एक बकरी आ गई, अपनी जीवन की पारिवारिक समस्या लेकर। तो जैसी उसने समस्या सुनी, तो बंदर एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली, यहां से वहां कूदने लगा। एक घंटा उठा पटक करने के बाद नीचे उतर के आया, तो बकरी ने पूछा, इससे क्या मेरी समस्या हल होगी? उसने कहा, समस्या हल तो नहीं होगी, पर इतना बताओ, मेरे प्रयास में, मेरे पुरुषार्थ में कहीं कमी तो नहीं रह गई? मेरे पुरुषार्थ में, मेरे प्रयास में कोई कमी तो नहीं रहेगी, उतना बताओ बस। तो व्यर्थ का पुरुषार्थ नहीं करना है, यहां से वहां प्रॉपर, यथोचित, सम्यक, राइटियस, राइट पुरुषार्थ। तो दो पुरुष, तीन विधियां, पहली पुरुषार्थ, दूसरा दुआएं, दूसरा पुण्य। पुण्य कैसे कमाएंगे? संतुष्ट करके, आत्माओं को संतुष्ट करके रहो और करो, पुण्य कमाओ। और तीसरा दुआएं कमाओ। दुआएं कैसे कमाएंगे? अथक सेवा। दुआएं कैसे कमाएंगे? दिल से सेवा। दुआएं कैसे कमाएंगे? बड़ी दिल से सेवा, निस्वार्थ सेवा करके। तो सेवाएं, तो सेवा एक मार्ग है, पुरुषार्थ एक मार्ग है, और तीसरा मार्ग है पुण्य। पुण्य करते जाना है दिन भर में, ढेर सारे पुण्य करते जाना है। नकी पर जाओ तो वो लोग क्या करते रहते हैं, वो छोटे छोटे पुण्य करते रहते हैं, मछलियों को आटा देते हैं, पंछियों के लिए दाने रखते हैं, क्या ये सब पुण्य के कार्य में, छोटे छोटे। शास्त्रों में लिखा है पुण्य करते जाओ, जमा होते जाएगा। वैसे ही हमें दिन भर पुण्य करते रहना है। जरूर ये नहीं हो सकता कि सारे दिन भर हम योग में रहे, ये भी नहीं होता है, मुश्किल है कि सारे दिन भर ही ज्ञान चिंतन करते रहे। दिन भर करेंगे क्या? पुण्य कमाने, आत्माओं की सेवा करते रहना है। रूहानी सोशल वर्कर, कुछ ना कुछ सेवा करते रहो, स्थूल सेवा करो, सूक्ष्म सेवा करो, मनसा सेवा करो, कोई भी सेवा करो, पर सेवा जारी रहे, सेवा रुकनी नहीं चाहिए। क्योंकि सेवा रुकी तो व्यर्थ आना चालू हो जाएगा। और बाबा ने कहा संगम युग को वरदान है, तुमको वरदान दिया है, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसमें देखो, चेक करो कहीं व्यर्थ संकल्प तो नहीं आते, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ कार्य, कुछ व्यर्थ तो नहीं हो रहा है दिनचर्या में, तो बिजी कर देना है स्वयं, बिजी दिनचर्या। जिन्होंने जिन्होंने ये सोचा कि बाबा हमको थोड़ा सेवा से मुक्त कर दो, हम घनघोर तपस्या करेंगे, वो सब माया के मुख में चले गए। इसके लिए सेवा बहुत जरूरी है, बिजी रहना बहुत जरूरी है, व्यस्त रहना दिनचर्या में, कहीं पर भी जरा भी खाली टाइम नहीं हो कि ये 15 मिनट अभी मेरे एकदम फ्री है, थोड़ा मैं रिलैक्स होता हूं, बस वहीं पर कुटाराघात होगा माया का। तो तीन अर्थात तीन विधियां, फिर चार, मुरली की शुरुआत, चार खजाने के दाता है बाबा। कौन कौन से? वो ज्ञान का सागर, वो ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना और संकल्पों का खजाना, के दाता बाप दादा अपने बच्चों से मिल रहे हैं, और सभी बच्चे नैनों में समाये हुए, और सभी बच्चों को समान खजाना दिया हुआ, और सभी बच्चे बालक है, मालिक है, अधिकारी है। क्या है बच्चे? बालक सो मालिक सो अधिकारी बच्चे है, बालक भी है, मालिक भी है सारे खजानों के, और अधिकारी भी है, और सबको समान दिया है, सब नैनों में समाये हुए है, और सभी खजानों को प्राप्त कर बाबा दे रहे, सब हर्षित हो रहे हैं। यह है मुरली की शुरुआत। तो चार खजानों की चर्चा की है, गुण, ज्ञान, शक्ति और संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, और चार अटेंशन की चर्चा की है बाबा ने मुरली में, बीच में कहीं। कौन से चार अटेंशन? तीन तो तुम्हारे हैं, अब इस पर अटेंशन दो। तीन तो तुम्हारे हैं, अब इस पर अटेंशन दो। कौन से तीन है जो जिस पर ऑलरेडी अटेंशन है? धारणा पर अटेंशन है, अगर नहीं है तो वो भी रखो। बाबा ने कहा तुम्हारा है पर नहीं है तो रखो धारणा। दूसरा ड्रामा, जैसे ड्रामा को पर अटेंशन रखते हो। तीसरा आत्मिक स्वरूप का टेंशन, जैसे तुम्हारा आत्मिक स्वरूप का टेंशन है, जैसे तुम्हारा धारणा का टेंशन है, जैसे तुम्हारा ड्रामा का टेंशन है, अगर नहीं है तो पहले तो ये तीनों ही रखो। बाबा ने ये समझ लिया, मान लिया, गणितज्ञ है ना वो, मैथमेटिशियन, मान लेते हैं है, सपोज ए इक्वल टू बी, मान लिया चाहे है या नहीं है, बाबा ने मान लिया कि तुम्हारा है अटेंशन, पर तुम्हारा एक बात में नहीं है, कर्म की गुह्य गति पर, उस पर भी अटेंशन रखो। तो चार में ये चारों चीजें, चार खजाने और चार प्रकार के अटेंशन। आत्मिक स्वरूप का अटेंशन अर्थात दिनचर्या में ध्यान रखना है, अगर देह की तरफ दृष्टि जाती है फिर अपने आप को ठीक करना है, क्योंकि गिरना और संभलना है, ये तुम्हें इन्हीं राहों पर चलना है, मंजिल बहुत भारी ऊंची, फिर आत्मा देखना। ये चार, फिर उसके बाद में पांच, पांच में फिर पांच बातें। सबसे पहला पांचवी पॉइंट है सेवा की। सेवा में सबसे पहला, जैसे वो सूर्य क्या करता है, अंधकार को समाप्त करता है, अपनी किरणें फैलाता, वैसे तुम ज्ञान सूर्य हो, तुम्हें सुख शांति संपन्न किरणें आत्माओं तक फैलानी है, जो दुखी है, जो अशांत है, यह सकाश देने की सेवा तुमको करनी है। इस सकाश देने की सेवा की बहुत आवश्यकता है। तो सबसे पहला सकाश, दूसरा तुम्हें अपनी वृत्ति से वायुमंडल को भी परिवर्तन करना है। वो तो कहा हो गया आत्माओं को परिवर्तन, यह है वायुमंडल को भी परिवर्तन करना है तुम्हें, क्योंकि वायुमंडल बहुत तमो प्रधान है। ये कितने बड़े बड़े काम है। तीसरा, जैसे वाचा सेवा का विस्तार है, वैसे तुम्हें इस सेवा का हैप्पी और होप जैसे टॉपिक्स के लिए बाबा ने कहा। ये कौन सा टॉपिक था, 2007 में चल रहा था शायद, विदेशियों का कुछ होगा, विदेशियों का कुछ होगा, हैप्पी एंड होप। तब वैसे तुमको यहां पर आत्मा को उमंग देना है, उत्साह देना है, शक्ति भरनी है। चौथा साइट सीन्स, साइट सीन आएंगे, अच्छे भी आएंगे बुरे भी आएंगे, परंतु तुमको क्या करना है, विचलित नहीं होना है, साक्षी दृष्टा होकर देखते रहना है, तो मनोरंजन लगेगा। और पांचवा, यहां पर फिर से एवरडी को याद किया बाबा ने, कब तक एवरडी बनोगे, रात तक, आज रात तक बन जाना। और यहां पर फिर दो तीन प्रश्न पूछे हैं बाबा ने, तुम्हारा इंतजार कर रहा है बाप दादा, गेट खोलने के लिए इंतजार कर रहा है, एडवांस पार्टी आह्वान कर रही है, आत्माएं इंतजार कर रही है। समय का इशारा यहां पर दिया। ये सेकंड टाइम एवर रेडी को बाबा ने याद किया, पहले ऊपर और फिर से एवर रेडी बनने के लिए यहां कहा। एवर रेडी बने हो, कब तक बनोगे? ये पांचवा। और बीच बीच में थोड़े सम्मान भी दिए हैं, तुम कौन हो, विश्व कल्याण करी, विश्व कल्याण के निमित्त हो, विश्व कल्याण की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। फिर बीच बीच में और कर्मों की बातें कही है, साधारण कर्म, साधारण संकल्प, साधारण समय ये भी ना हो, इसका भी फर्क पड़ता है, ये भी कहा। विशेष आत्मा। उसके बाद में पार्टियों से मुलाकात में छह बातें हैं। सबसे पहले भोपाल ग्रुप, सबसे पहले न्यू कमर्स, फर्स्ट टाइमर्स, क्या कहा उनको? दो बातें, एक तो पीछे आए हो पर तुमको आगे जाने का संकल्प करना है। ये नहीं समझना हम पीछे आए, पीछे तो आए हो पर अब आगे जाने का संकल्प करो। और दूसरा हिम्मत, हिम्मत रखो तो तुमको बाप दादा की मदद और किसकी मदद, परिवार की भी मदद मिलेगी। हिम्मत ही नहीं है तो परिवार से मदद भी नहीं मिलेगी। बाप से कनेक्शन नहीं है तो परिवार से अगर मदद नहीं मिल रही है तो शायद बाप से कनेक्शन थोड़ा सा ढीला है। बीच से कनेक्शन रखो तो पत्ते आपे ही सहयोगी हो जाएंगे। पत्ते सहयोगी नहीं है, डाल डालिया सहयोगी नहीं है, अर्थात बीच से तगड़ा कनेक्शन नहीं है तो जिगरी हड्डी गहरा कनेक्शन बीच से जोड़ दो। ये दो बातें फर्स्ट टाइम है। दूसरा है भोपाल, उसमें तीन बातें। सबसे पहला किसका अनुभव कर रहे हो? अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया। क्या पूछा बाबा ने भोपाल वालों से? अति इंद्रिय सुख का अनुभव कितना किया? उस अनुभव करो, वो अनुभव करो, अति इंद्रिय सुख का अनुभव। दूसरा झंडी, कौन सी झंडी? कि इस प्राप्तियों को कायम रखेंगे और विघ्न विनाशक बनकर दिखाऊंगा। संकल्प दिया है कि मैं विघ्न विनाशक बनकर दिखाऊंगा, ये झंडी लहराओ। और तीसरा नवीनता करो, कौन सी नवीनता? सेवाओं में नवीनता करो। क्या क्या कर लिया तुमने और क्या क्या करना बाकी है? कॉन्फ्रेंस कर ली, विंग्स वर्गीकरण हो गया, मेले कर लिए, कॉन्फ्रेंस कर लिए, सेमिनार कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब कुछ नवीन करो। ऐसा करो शॉर्ट एंड स्वीट, ऐसा करो कि जिसमें कम खर्च बाला नशीन, वो करना बाकी है। ये 2007 में बाबा कह रहे हैं कि नवीन करो। तो ये हो गई तीन बातें। फिर विदेशियों की एक बात, विदेशियों के लिए क्या कहा बाबा ने? वो तो है डबल पुरुषार्थी, परंतु एक एग्जाम्पल सेट करना है। कौन सा एग्जाम्पल? निर्व्यर्थ, निर्विघ्न, निर्विकल्प। भारत वालों को भी कहा, केवल विदेशियों के लिए नहीं, भारत ने भी ये करना है, निर्व्यर्थ, निर्विघ्न, निर्विकल्प। और फिर बाबा ने थोड़ा सा उनके डबल त्याग के लिए भी बात की। तो एक बात जो होमवर्क के रूप में विदेशियों को दी है वो है ये वाली। तो ये छह में फिर छह बातें, डबल फॉरेनर्स दो, भोपाल तीन, न्यू कमर्स एक, भोपाल तीन और डबल फॉरेनर्स एक। तो ऐसी ये कल की अव्यक्त वाणी थी। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहली बात बताई समय, एक से समय। ये समय के लिए क्या क्या कहा फटाफट बोलो। वो नहीं, जिस ढंग से बताया उसी ढंग से बताना है, जिस ढंग से बाबा ने बताया। सबसे पहले नौ में सबसे पहला भविष्य का प्रारब्ध, दूसरा एक सेकेंड एक वर्ष, तीसरा अब नहीं तो कब नहीं, चौथा हीरे तुल्य, पांचवा जीवन हीरे तुल्य, छठवा बिछड़ी हुई आत्माओं को यहां पर परमात्मा मिलन, परमात्मा प्राप्ति, परमात्मा सब कुछ। उसके बाद में सातवा परिवार, आठवा श्रेष्ठ जितना बन चाहो, बनना चाहो अब बन सकते हो, और बाद नौवा भाग्यवान आत्माओं, ये सदा स्मृति में। ये पहली बात। दूसरी बात, दो बातें पास विद ऑनर होने के लिए, नष्ट मोहा और एवर रेडी। एवर रेडी में दादी का एग्जाम्पल, दादी के एग्जाम्पल में इजी 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 इजी। ये बड़ी अच्छी चीज बाबा ने बताई कि संबंध संपर्क इजी, संपर्क इजी, सेवा इजी, कार्य इजी, स्वभाव इजी, संतुष्ट रहना इजी, संतुष्ट करना इजी, इतनी सात बातों में इजी, सब कुछ इजी 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 रहना। उसके बाद में एवर नष्टो मोहा में देह से नष्ट मोह हो जाओ, बाकी सबसे अपने आप नष्ट हो मोह हो जाओगे, ये एक मेन है। और किसी किसी को किसी से नष्ट मोह होने की जरूरत नहीं, अपनी देह और देहभान से नष्ट मोह हो जाओ, बाकी सबसे हो जाएगा। फिर तीन बातों में तीन विधियां, कौन सी तीन विधियां? जमा करने में पुरुषार्थ बहुत जरूरी, पुरुषार्थ करना है प्रॉपर, एक डाली से दूसरी डाली में एक घंटा तक कूदते फांदते नहीं रहना है, प्रॉपर पुरुषार्थ होना चाहिए। तो पुरुषार्थ, दूसरा पुण्य कमाने है, सारे दिन भर पुण्य की स्मॉल एक्ट्स ऑफ गुडनेस, छोटे 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 पुण्य जमा करने हैं, जैसे कि पुण्य जमा करने की विधि क्या है, छोटे छोटे कौन से पुण्य जमा करने हैं, चिमन भाई से पूछ लेना कैसे पुण्य जमा करने हैं, छोटे 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 पुण्य दिन भर में छोटे 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 पुण्य जमा करते रहना है, तो पुण्य जमा करते रहना है, मदद करते रहना है, सहयोग करते रहना है, किसको कुछ चाहिए वो देते रहना है, असहाय जो है उसको सहायता देना सबसे बड़ा धर्म है, दुखी जो है उसका दुख दूर कर लेना, हर लेना सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा पुण्य है, किसी के आंसू पोंछ लेना सबसे बड़ा धर्म है। जबरदस्ती क्या करता है, पुण्य, तो पुण्य जमा करने है। उसके बाद में तीसरा दुआएं जमा करनी है, दुआएं कैसे जमा करेंगे, सेवाओं से, कैसी सेवा हो, निस्वार्थ, कैसी सेवा हो, दिल से, कैसी सेवा हो, अथक, मैं थक गया, मैं कमजोर, मैं बीमार, मेरे से तो नहीं होता, मैं ही करूं क्या, बाकी लोग तो नहीं करते, हम ही मरे क्या, बाकी लोग आराम से योग कर रहे, सेवा कर रहे, दूसरा कर रहे और हम ही ऐसे करते रहे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है हमेशा, अथक सेवा, निस्वार्थ सेवा और बड़ी दिल से सेवा, अथक, आत्मिक स्वरूप में रहेंगे तो अथक है, शरीर भान में अगर कर रहे ये कहना मैं थक गया हूं, ये सब देहभान की, मुझे भूख लगी है, ये सब देहभान के लक्षण है, मुझे बहुत भूख लगी आज, ये कहना आत्माभिमानी स्थिति है या देहभान है, नहीं पहले ये बताओ मुझे, ये कोई कहता है कि मुझे आज बहुत भूख लगी है, सुबह नाश्ता भी नहीं किया, मुझे बहुत भूख लगी है, अभी ये आत्मिक अवस्था है या देहभान है, तो ये शब्द का चयन कैसा है। उसके बाद में कहां थे हम, चौथा, चार बातें अर्थात चार खजाने, ये खजानों का मालिक बाबा बच्चों को देख रहे हैं, कौन सा खजाने हैं, संकल्प के खजाने, बोल, ज्ञान गुण शक्ति और संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प के खजाने, और चार अटेंशन, ड्रामा पर अटेंशन है नहीं है तो रखना है, धारणाओं पर अटेंशन, धारणा और आत्मिक स्वरूप पर अटेंशन तो है, पर अभी अटेंशन किस पर रखना है, कर्म की गति पर अटेंशन रखना है, कर्म की गति कैसे काम करती है, हाँ आंसू वाला, तो कैसे कर्म की गति काम करती है, सारा घूम फिर कर हम तक ही आता है, मैंने जो कुछ किया वो घूम कर मुझ तक ही आना है, मेरे तक ही पहुंच रहा है, मेरे तक जो आ रहा है वो मेरे द्वारा ही निर्माण किया हुआ है, मैंने ही फेंका था और वो वापस मुझ तक पहुंच रहा है, इसलिए तो प्रार्थना करते थे सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी हो जाओ, अर्थात अंदर में मैं सुखी हो रहा हूं अपने आप, ये चार। फिर पांच बातें सेवाओं की, पांच बातें, सबसे पहला सकाश, तुमको ये सेवा करनी है सकाश देने की, विश्व तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो, सुख शांतिमय किरणों की सकाश देनी है, दूसरा बताया वायुमंडल, तीसरा बताया होप और हैप्पी, ये थोड़ा ढूंढना क्या है, ये 2007 में होप और हैप्पी क्या था, ऐसे टॉपिक्स पर बाबा ने कहा ये करो और उमंग उत्साह भरा, भरो आत्मा में, शक्ति भरो आत्माओं में, नहीं हैप्पी होप नहीं, कुछ तो प्रोजेक्ट होगा वो, कुछ तो होगा। फिर उसके बाद में चौथा साइट सीन, साइट सीन आएंगे, अच्छे भी आएंगे बुरे भी आएंगे, बुरे आएंगे तो क्या करेंगे और अच्छे आएंगे तो क्या करेंगे, दोनों में अलग अलग कुछ करना है कि एक ही करना है, एक ही चीज करना है, जब अच्छा है तो भी साक्षी, बुरा है तो भी, बुरे में साक्षी होने के लिए अभ्यास चाहिए, अच्छे में भी साक्षी रहने का, दुख में साक्षी रहने के लिए अभ्यास चाहिए सुख में साक्षी रहने का, दुख में स्थिर रहने के लिए अभ्यास चाहिए सुख कितना भी आ जाए विचलित नहीं होना सुख से, खुशी कितनी भी आ जाए विचलित नहीं होना, असफलता में साक्षी रहने के लिए अभ्यास चाहिए असफलता आने पर साक्षी रहना, वो असफलता सफलता आए तो हम प्रभावित ना हो, खुशी आए तो हम प्रभावित ना हो, बहुत सारी खुशी मिल जाए अप्रभावित, वही व्यक्ति दुख में भी अप्रभावित रह सकता है असफलता में भी अप्रभावित रह सकता है, जो इधर हिल जाता है वो उधर भी हिलेगा, हाँ जो ऊपर चढ़ जाता है, जमीन पर रहना है ग्राउंडेड इन रियलिटी, जमीन पर पैर रखने चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये चौथा। और पांचवा एवर रेडी, एवर रेडी कब तक बनना है, आज रात तक बन जाना आज रात तक बन जाना, और बाबा ने कहा सब इंतजार कर रहे हैं, समय बाप दादा एडवांस पार्टी आह्वान कर रहे हैं, वो सब चीजें बोली। उसके बाद में छह बातें, छह बातों में सबसे पहले जो नए आए हैं उनको क्या करना है, पीछे से आगे जाना है और हिम्मत रखनी है, तो परिवार की मदद बाप दादा की मदद मिलेगी। फिर उसके बाद में भोपाल, भोपाल को फिर से तीन बातें, सबसे पहला अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है, नहीं किया अब तक ब्राह्मण जीवन में, ऐसा ही ब्राह्मण जीवन चल रहा है, अमृत वेला तो उठ रहे परंतु अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं, खाली बाबा से बातें चल रही है बस, समाचार की लेन देन हो रही है अमृत वेला, समस्याएं बताना चालू है बस, बीज रूप स्थिति अतीन्द्रिय सुख नहीं हो रहा है, अर्थात बहुत बड़ी कमी है, अर्थात एक घंटा एक डाली से दूसरे डाली में कूदना चालू है, पर कब तक प्रिपरेशन नहीं चालू रखेंगे। और फिर दूसरी बात बताई भोपाल को, झंडी मैं विघ्न विनाशक हूं, और कौन सा कायम रखना है, कौन ये सारी प्राप्तियों को कायम रखना है। फिर तीसरी बात नवीनता लानी है, उसके बाद डबल विदेशियों को क्या करना है, एक एग्जाम्पल सेट करना है, कौन सा निर्व्यर्थ निर्विघ्न और निर्विकल्प, और उनके डबल त्याग और डबल पुरुषार्थ करने के लिए भी बाबा ने कहा। तो ये आज की कल की अव्यक्त वाणी थी, इसको फिर से पढ़ना, जो जो बातें यहां छूट गई है डिस्कशन करने की सब आ गया उसको भी ध्यान से पढ़ना और चिंतन करना मनन करना डिस्कस करना। ओम शांति।
चल ठीक।